Adi. क्यों? राज करेगा खालसा तो सिर्फ क्या सिखों की दुनिया में ही राज करेगा जो सिखों ने गायन है। सिख सारी दुनिया में नहीं फैले हुए हैं? फैले हुए हैं या नहीं? माना 28 तक जो आधार मूर्त ब्राह्मण हैं उनकी दुनिया में, और जो बीज रूप ब्राह्मण हैं उनकी दुनिया में भी वो पूरा राज्य करेगी। बाद में जो समझ जाएंगे, जैसे 76 में हुआ, क्या हुआ हमारे भारतवर्ष में 2 बार देवियों की पूजा होती है, होती है कि नहीं है? 2 बार नवरात्रे आते हैं। तो पहली बार संगम युग में नवरात्रा कब हुआ है? कब हुआ है? भूल गए? प्रैक्टिकल में कर भी लिया, अभी भी कर रहे हैं तो भी भूल गए। अरे सन 76 से पहले नवरात्रा पूरा हुआ एडवांस ब्राह्मणों की दुनिया में, जिनकी बुद्धि में वो भगवान बाप प्रत्यक्ष होता गया कि ये मुकर्रर रूप है भगवान का, मुकर्रर रथ। तो उन्होंने क्या किया, जिनको देवी देवताएं देवियां समझते थे, अपने बच्चों को भी दूध नहीं पिलाते थे, वो पैसा ले जा करके उनके मकान बनाते थे, उनको अच्छी अच्छी साड़ियां अर्पण करते थे, खान पान अर्पण करते थे, पूरी देवी देवताओं की तरह पूजा करते थे। फिर जिनकी बुद्धि में भगवान का वो मुकर्रर रूप बैठ गया, फिर उन्होंने क्या किया और अभी भी क्या कर रहे हैं? हैं? जिनकी पूजा करते थे देवियों की, उनको डूबी जा कर दिया या नहीं कर दिया? कर दिया। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं, नहीं डूबती हैं तो पांव रख करके दुबा देते हैं। कौन सा पांव है? ये बुद्ध रूपी पांव से ज्ञान की बातें सुना सुना करके उनको डाउन कर देते हैं, डुबा देते हैं। इतना डाउन हो जाते हैं कि उन्हें भगवान की वाणी पर कोई विश्वास नहीं रहता। भगवान आया हुआ है ये भी विश्वास नहीं रहता, पक्का कर देते हैं। भगवान कोई नहीं आता है नई दुनिया बनाने के लिए, नई दुनिया हम बनाते हैं, हम करने वाले हैं नया संसार, हम करने वाले हैं माने हम गुरु की औलाद है, असली कौरव हम हैं। अब इस दुनिया में हमारा राज्य चलेगा, हमको भगवान दुनिया की राजाई दे गया है, जगत का राज्य दे गया है, धीरे धीरे सारे संसार पर हमारा राज्य होगा। ऐसी अभिलाषा लेकर के बैठे हुए हैं। तो ऐसे नहीं कि सन 28 में जगदम्बा का सारे जगत पर राज्य हो जाएगा। किस पर राज्य हो जाएगा? है? है? वो तो 28 तक, 28 के बाद तो डूबी जा होगी या नहीं होगी? भगवान प्रत्यक्ष होगा और डूबी जा करने लगेंगे। बाकी सब तो दुनिया में डूबी जा नहीं करेंगे। ये रावण का रूप तो वर्ष वर्ष बढ़ता जाता है या कम होता जाएगा? हाँ, तो 28 के बाद भी ये दुनिया में इन सन्यासियों का वर्चस्व बढ़ता ही जाएगा। जब तक सारी दुनिया का सब धर्मों का टोटल विनाश न हो जाए तब तक महाकाली का राज्य बाहर की दुनिया में बना ही रहेगा। बाकी नई दुनिया का राज्य विष्णु के हाथ में होगा। विष्णु नो विषयताल, जिनकी बुद्धि में से विषय वासना की दुनिया निकलती जाएगी उन देव आत्माओं के ऊपर सरपरस्त है वैष्णो देवी और विष्णु ही होगा। और हाँ उसके बाद पुरुषार्थ करना। और
बाबा अभी मुनि को बताया कि तीन प्रकार की आत्माएं पार्ट हो जाती
है,
सृष्टि पर तीन प्रकार की आत्माएं पार्ट हो जाती
है।
एक तो है कौन सी अक्षर, तीसरी कौन सी
है,
तीसरी कौन सी आत्मा कौन सी है।
एक अक्षर क्षरित होने वाली, पतित होने वाली, और दूसरी,
तीसरी
और दूसरी वो है जो अक्षर है वो भी एक जन्म के लिए इस सृष्टि पर आता है, और तीसरी वो है जो पुरुषार्थी जीवन को क्रॉस करके संपन्न जीवन में प्रवेश करती है विष्णु, जो गीता में भी लिखा हुआ है कि मुख्य रूप से दो प्रकार की आत्माएं हैं क्षर और अक्षर, लेकिन तीसरी प्रकार की और एक श्रेष्ठ आत्मा है वो है पुरुषोत्तम, पुरुषों में उत्तम। ये कंट्रास्ट है, क्या तुलना की गई है किसमें उत्तम, पुरुषों में उत्तम। माना जो जन्म मरण के चक्र में आने वाले पुरुष हैं उनमें उत्तम से उत्तम पार्ट बजाने वाला वो पुरुषोत्तम। बाकी पुरुष माने आत्मा भी है, उन आत्माओं के साथ शिव की तुलना नहीं की जा सकती, वो तो तुरिया है। उसको आत्माओं के बीच में जन्म मरण के चक्र किया में आने वाली आत्माओं के बीच में उस शिव को उत्तम नहीं कहेंगे, उसकी गिनती ही नहीं होती है किसी में। जो गिनती में आवे वो इस चक्कर में भी आवे 84 के चक्कर में, वो गिनती में भी नहीं आता तो 84 के चक्कर में भी नहीं आता।
बाबा जोधपुर के आगे एक गांव है उसमें एक माता का मंदिर है, तो वो माता का नाम है नागरेशा, और वहाँ नाग के नाग की सवारी है, नाग के फंड के ऊपर बैठी है वो माता, उसका क्या है बाबा।
एक माता बताओ
दे
की सवारी नाग के फण के ऊपर है,
उसकी सवारी
माता की सवारी नाग के फण के ऊपर है। हाँ तो पूछना क्या है,
उसका मतलब क्या है, वो नाग का फण पर क्यों है।
नागेश्वर का नाम सुना है, सुना नागों का ईश्वर कौन है, मुखिया है महादेव, महादेव नागेश्वर है माने नाग है। अरे उसके गले में, बाहों में, कमर में, सर के ऊपर नाग बैठे हुए हैं कि नागेश्वर है वो, उसका आधार लेते हैं नाग। तो नागों में जो मुखिया है वो कौन है? वासुकी नाग। वासुकी नाग का मतलब ये है वसु का पुत्र वासुकी, जैसे ब्रह्मा का पुत्र ब्राह्मण, विष्णु का पुत्र वैष्णव, ऐसे वसु का पुत्र वासुकी, जैसे वसु का पुत्र वासुदेव। माना जो वासुदेव है और जो वासुकी या नाग है वो एक ही है। क्या? वसु माने धन संपत्ति। क्या? इस दुनिया में हम जानते हैं कि बड़े से बड़ी धन संपत्ति कौन है? है ज्ञान धन। लेकिन ज्ञान धन जो है वो धारण करने वाले तो अनेक होते हैं। तो अनेक वसु हैं क्या? अरे होंगे भी तो नंबर वार होंगे। तो अव्वल नंबर वसु कौन? है प्रजापिता। है प्रजापिता को कोई देने वाला नहीं है ज्ञान। कोई आत्मा दुनिया में नहीं है जो प्रजापिता को ज्ञान देती हो। सर्वात्माओं का पिता शिव है ना, वो ऐसा ज्ञान का भंडार है, ऐसा वसु है जिसे ज्ञान के भंडार में गायन है। क्या गायन है? पूर्णमिदम्। पूर्णमद है, पूर्णात् पूर्णम यदुच्यते, और कुछ पूर्णम से पूर्णम आदाय, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णमेव अवशिष्यते। ऐसा वो पूर्ण है, ज्ञान का भंडार है कि उसमें से पूरा ही निकाल लो तो भी क्या बचेगा? पूरा ही बचेगा। ऐसा वो ज्ञान योग का भंडार है। तो उसमें मुख्य है ज्ञान का भंडार। उसका बच्चा कौन? वासुदेव कहो या वासुकी कहो, जो वासुकी सदैव शंकर के गले में विराजमान होता है, वो ही वासुकी वाली आत्मा है जो रामायण में राम के साथ सदा रहता है। जैसे वासुकी नाग रहता है सदा विराजमान गले में, ऐसे ही वो वासुकी वाली आत्मा जिसे शेषनाग भी कहते हैं, वो शेषनाग वाली आत्मा कौन हुई? लक्ष्मण के रूप में, राम के भाई के रूप में रामायण में दिखाते हैं। और भागवत में, महाभारत में क्या दिखाते हैं? कृष्ण भगवान का भाई कौन? बलराम। वो भी शेषनाग की यादगार है, उसी का अवतार है। तो ये वासुकी है जो नाग कहा जाता है, वो वासुकी नाग किसको सर पर धारण करता है? है? अरे उससे ऊंचा होगा या जो सर पर धारण किया हुआ उससे नीचा होगा? है? ऊंचा है। कौन है ऊंचा? शेष नाग रूपी जो लक्ष्मण हैं, किसके पांव पड़ते थे? हैं? सीता के भी नाव पांव पड़ते थे। पांव पड़ना माने सर पर धारण किया है या नहीं किया? हैं? किया। तो इससे साबित हुआ कि वो भी कोई देवी है जिसकी यादगार है नागेश्वरी दिखाई है। और सुना कौन सी आवाज कान में ज्यादा सर्र की आ रही है? हाँ ये कूलर चल रहा है। हाँ जी
शंकर के सीने में शिवलिंग बताइए।
हाँ हाँ दुनिया वाले तो ये समझते हैं कि हनुमान ने छाती फाड़ के दिखाई। किसको दिखाया? भगवान को दिखाया। तो लोग समझते हैं भगवान का वास दिल में होता है। अब हमें तो पता चल गया भगवान का वास हृदय में होता है या मन में होता है? हैं? तो जो मन है वो ही दिल है। वो यहाँ नहीं है। मन कहाँ पर है? हैं? ये मन बुद्धि है। बुद्धि ऊपर है और मन नीचे। और हाँ
बाबा ने बोला है ना कि तुम बच्चे परमधाम को इस सृष्टि पर उतार देंगे। मुझे परमधाम उतारने की बात नहीं, 28 में राजधानी स्थापन हो जाएगी उसके बाद से पहले
से। शिव कहाँ रहता है? परमधाम में रहता है। इस सृष्टि पर कहाँ रहता है? 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 मुकर्र रथ में, पांव में रहता है, कमर में रहता है, नाक पे रहता है। कहाँ रहता है? हाँ ब्रकुटी का आरती है बड़ी पूरी कुटी। क्या वो ही परमधाम बन जाता है? सारी दुनिया की बुद्धि में जब परमधाम जाने का टाइम होगा तो किसका वास होगा? झाड़ में किसे दिखाया है? हैं? शंकर को दिखाया। तो वो ही परम नाम हो गया जहाँ बाप का निवास है। इस सृष्टि पर तुम बच्चे परम धाम को उतार लेंगे माने तुम्हारी सब की बुद्धि में वो स्टेज हो जाएगी जो मुकर्रर रथ की स्टेज है, आत्मिक स्टेज। तुम बच्चे भी उसी स्टेज में स्थित हो जाएंगे। तो कहाँ के वासी हो जाएंगे? परमधाम वासी हो जाएंगे।
लेकिन बाबा माउंट आबू बनेगा?
है
परमधाम तो माउंट आबू में बनेगा।
माना बाप माउंट आबू में नहीं होगा। वहाँ जितने भी तपस्वी होंगे वो आत्मिक स्थिति में नहीं होंगे। है आत्मिक स्थिति तो सबसे बड़ी तपस्या है। देह के भान में रहना, देह की इंद्रियों के भान में रहना, उससे सुख लेते आए सतयुग के आदि से लेकर कलयुग के अंत तक। तो वो ऊंची स्टेज है। देह के भान में जब रहते आए तो वो सत्य धाम की स्टेज है या दुख धाम की स्टेज है? तो दुख धाम हो गया। हाँ
शुरुआत अखाड़ा के बाप से
हो
जाएगी ना,
नंबर बार हो जाएगी, एक जैसी तो नहीं हो सकती। हाँ हाँ जी,
जब हमें हमारा पार्ट प्रत्यक्ष होने लगे उसके बाद क्या करें? हमें अपना खुद का पार्ट प्रत्यक्ष होने लगे उसके बाद क्या करें?
हमें अपने पार्ट की
प्रत्यक्षता होने लगे,
प्रत्यक्षता हो जाएगी। अच्छा,
उसके बाद में क्या करें?
जो मनुष्य सृष्टि का बाप है उसको अपने पार्ट की इस संगम युग में कभी प्रत्यक्षता होती है या नहीं होती है? है? जब बाप की प्रत्यक्षता होती है और उसका टाइम निश्चित है तो हमारे पार्ट की प्रत्यक्षता नहीं होगी। बाप के पार्ट की प्रत्यक्षता बाप को होती है तो वो क्या करता है? है? कुछ करता है या जैसे जिंदगी में पहले चलता था वैसे ही चलता है? अरे लोग पढ़ाई पढ़ते हैं, BA, MA, PhD करते हैं, IAS का, PS का, PCS का इम्तहान देते हैं, बड़ा बड़ा इम्तहान पास करते हैं, तो उनको नशा आ जाता है, या जब इम्तहान पास करने के बाद कलेक्टर की, कमिश्नर की या कोई भी ऊंची पोस्ट पर बैठते हैं, सीट पर, तब उन्हें ज्यादा नशा चढ़ता है। कब चढ़ता है? तो राम वाली आत्मा को भी ज्यादा नशा कब चढ़ा होगा? है? कब है? अरे उसे कब पता चलता है कि मेरी ये सीट है? हाँ, तो ऐसे ही हर आत्मा का अपना टाइम नुदा हुआ है, आठ का भी अपना टाइम नुदा हुआ है। जिनको पता चलता है कि हम धर्मराज की सजा खाने वालों में से नहीं है, क्योंकि हमारा फाउंडेशन ही यज्ञ के आद से ही तन के द्वारा, धन के द्वारा, मन के संकल्पों के द्वारा, समय के द्वारा, संबंधियों के द्वारा, संपर्क में आने वाली आत्माओं के द्वारा ये साबित करता है कि हम उन बातों से नष्टो मोहा होकर के शुरुआत से ही रहे। पहले परसेंटेज कम था, बाद में परसेंटेज बढ़ता जाता है, तो उन्हें निश्चय हो जाता है क्या कि हम ही हैं, हम जरूर अष्टदेव की स्टेज में आने वाले हैं। तो नशा चढ़ेगा या नहीं चढ़ेगा? चढ़ेगा। दूसरों से कहो आप इसके आप अष्टदेव में आने वाले, अरे भाई हम कहां। जबकि अभी अष्टदेवों का पार्ट सभी का डिक्लेयर नहीं हुआ है, तो भी ऐसे कह देते हैं अरे हम कहां और वो अष्टदेव कहां।
अपने स्टेज तो पता है ना,
है
अपने स्टेज तो पता है ना सबको कि हम किस स्टेज पर जा रहे हैं।
अच्छा,
तो बाबा पढ़ा
नहीं, मतलब अष्टदेवों की स्टेज ज्यादा ऊंची है ना बहुत।
देखा क्या पार्ट प्रत्यक्ष हो गया?
लेकिन जैसे आप बोलते हैं
डिक्लेयर हो गया, जब डिक्लेयर नहीं हुआ तो उनको ऊंचा क्यों मान लिया?
लेकिन जैसे आप बोलते हैं ना, जब से वो ज्ञान में आता है नष्ट मोहा के लब्धा हो जाता है ना,
तो आपकी शुरुआत से ये स्टेज नहीं है?
है?
हाँ जी, और हाँ वो खड़े हो गए, आप तो बैठे हैं। हाँ बोल बोल।
ब्रह्मा को बड़ी माँ क्यों कहा जाता है? ब्रह्मा को बड़ी माँ क्यों कहा जाता है?
ब्रह्मा को
बड़ी माँ क्यों कहा जाता है?
बड़ी
बड़ी
ब्रह्मा, ड्रामा को बड़ी माँ कहा जाता है, ड्रामा को ब्रह्मा को बड़ी माँ क्यों कहा जाता है? ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ, जो माँ की तरह बड़ा गुण धारण करके दिखाए। माताओं का सबसे बड़ा गुण क्या होता है? सहन शक्ति। तो जो माताओं का पार्ट बजाने वाली माताएं हैं, उनके बीच में जिसने ये सहन शक्ति का सबसे बड़ा पार्ट अदा करके दिखाया, वो ही हो गई बड़ी ना? कौन हुई है? कौन हुई बड़ी माँ बताओ? है ब्रह्मा हुई। जगदम्बा भी गई। जगदम्बा ने सबसे ज्यादा सहन शक्ति का पार्ट अदा किया, क्या किया? नहीं किया। और ब्रह्मा ने? ब्रह्मा ने तो किया। चैलेंज है, कोई भी ब्रह्मा कुमार कुमारी ये नहीं कहेगा ब्रह्मा ने हमको दृष्टि से, वाचा से या कर्मेंद्रियों से दुख दिया। कोई कहेगा? सबको सदैव सुखी ही सुख दिया, खुद दुख लिया, यहाँ तक कि मरते दम तक क्या गए ने शास्त्रों में है, कृष्ण के पांव में बहेलिए ने तीर मारा बात का, और उनके घाव से उनके प्राण पखेड़ उड़ गए। इतना सहन करती है माता। और हाथ तो उठाओ।
सबसे बड़ी बताइए तो बाबा तीन बच्चा ब्रह्मा विष्णु
है, ब्रह्मा शंकर तीनों को क्या? हाँ बच्चा बनाती है। हाँ ठीक है, उनकी अम्मा बन गई है। कब बना?
कब बनाए?
लो ब्रह्मा विष्णु और शंकर ये तीनों आत्माएं जो हैं, उनकी माँ की तरह प्रैक्टिकल जीवन में पालना करती है या नहीं करती है? है? करती है। अरे तो फिर मान लो ब्रह्मा की आत्मा भी अभी है कोई न कोई तन में है, और शंकर की आत्मा भी है ना कि नहीं है? वो भी है। और कौन? विष्णु, वैष्णवी शक्ति। जो वैष्णवी शक्ति है जिसको ब्रह्मा कहें, वो भी है या नहीं है? हैं? है ना ब्राह्मणों की दुनिया में? नहीं है? है। और बाबा ने बोला है तुम बच्चों ने जो भी दीदी दादियां हैं ब्राह्मणों की दुनिया में, उनको आदि में भी तुमने क्या किया था? श्रृंगार किया था गुण रत्नों से, और अभी भी तुम क्या करेंगे? है ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करेंगे। आज नहीं तो कल वो दीदी दादी दादाएं एडवांस ज्ञान को समझेंगे या नहीं समझेंगे? तो उनको श्रृंगार कौन करेगा गुण रत्नों से ज्ञान रत्नों से? हम बच्चे ही करेंगे नंबर वार। उनमें पहला नंबर किसका होगा? कौन सी शक्ति का होगा पहला नंबर? योगनिमा का हो। और
बहनों के साथ में सेवा में जाते हैं।
बहनों के
साथ में सेवा में जाते हैं।
जब जाते हैं हाँ,
जोड़ा भी नहीं जाना, माँ बेटा भी नहीं जाना, तो
माँ बेटा नहीं जाना,
माँ बेटे भी नहीं जाना,
माँ बेटी भी नहीं जाना, माने
माँ बेटे भी नहीं जाना, बिल्कुल भी नहीं जाने साथ में, फिर कौन जाएगा?
अरे ये तो कोई नियम ही नहीं बनाया गया यज्ञ में। यज्ञ में तो नियम बनाया गया है कि कन्याओं के साथ जब कभी भी बाहर जाना हो तो माता होनी चाहिए है। हाँ बेटे की तो बात ही नहीं बताई।
युगल जोड़ा भी नहीं जाना है।
हाँ युगल जोड़ा है तो युगल जोड़े में जो पति है वो पत्नी को अपनी मुट्ठी में रखता है या मुट्ठी से बाहर रहता है? पत्नी अरे बाहर रहती है या सदैव मुट्ठी में रहती है? बोलो ना मुख से। इसलिए नियम बनाया है अगर युगल भी किसी कन्या को ले जाएं तो साथ में यज्ञ की माता जरूर होनी चाहिए।
तो फिर बाबा माता को एक नहीं बोले थे सेवा के
है?
सेवा तो फिर मुक्ति रहती है।
सेवा
मान लो बाहर जाए कोई माता नहीं होती है युगल जोड़ा जाने के लिए तैयार है कोई माता नहीं है तो फिर सेवा कैसे होगी?
तो फोन किस लिए होता है? फोनबाजी करो और माताओं से एक एक से पूछो किसको टाइम है। जो काम कोई नहीं करता है कोई तैयार नहीं है तो वो काम कोई करेगा तो उसका ज्यादा सवाब मिलेगा कि नहीं है? नहीं मिलेगा। हाँ फिर क्या बात है?
माता को तैयार ही नहीं है ज्यादातर।
माता है नहीं है तैयार, सिर्फ पिता और पिता के साथ वाली माता ही तैयार है। इस दुनिया में और कोई है ही नहीं सेवादारी। ऐसे है? ऐसे तो नहीं है।
रुकने के लिए कोई है ही नहीं।
ऐसा नहीं होता है कभी।
देखिए जयपुर में आगरा के आकर के माताएं सेवा कर रही है, उदयपुर के आकर के।
तो क्या हुआ?
जयपुर की को रहना नहीं चाह रही।
अरे जयपुर में लंदन से आके माता सेवा करे, सेवाधारी तो दुनिया में मिल रही है ना। अरे एक से एक वीर धुरंधर पड़े हुए हैं दुनिया में।
उनका कहने का मतलब है कि एक माता तो
उनका नहीं, आपका अपना बताओ। उनको सपोर्ट न करो।
नहीं सपोर्ट का मतलब ये है कि उनका कहना मतलब है कि दो माताओं की।
उनका मतलब आप नहीं समझाइए, अपना मतलब वो खुद समझाएंगे। आपको सपोर्ट करने की दरकार नहीं है। आप आत्मा आत्मा बाई बाई
भाई भाई होते तो फिर ये बात नहीं होती भाई आप लोग नहीं जाओगे।
अभी आप आत्मा आत्मा भाई भाई बनाया नहीं है ना युगलों ने। कन्याएं बड़ी जल्दी समर्पण कर देंगे लेकिन युगलों को नहीं समर्पण करेंगे। तो आत्मा आत्मा भाई भाई हुए नहीं हुए ना। और
महाकाली और महालक्ष्मी के पार्ट में दोनों सेम आत्माएं हैं क्या?
महालक्ष्मी
महाकाली
महालक्ष्मी जो है तब ही कहा जाता है जब जगदम्बा वाली आत्मा अपने संस्कारों से लक्ष्मी के संस्कारों के अनुरूप बन जाए। और महानारायण भी तभी कहा जाता है जब नारायण वाली आत्मा जो राम वाली आत्मा है संगम युग में वो जो जन्म देने के निमित्त बनती है अपने बच्चे को, वो बच्चे वाली आत्मा भी संगम युग नारायण के संसर्ग संसर्ग में आकर के ऐसी बन जाए नारायण जैसी, नर से नारायण जैसी 16 कला संपूर्ण, तो महानारायण कहा जाता है।
महाकाली पूछा था, महाकाली में भी दो आत्माओं का पार्ट है क्या?
महाकाली में जो ब्रह्मा वाली आत्मा प्रवेश है जो चंद्रमा के रूप में दिखाई जाती है उस आत्मा की बुद्धि में भगवान के पार्ट की प्रत्यक्षता कब हो जाती है? कब होती है बताओ? है है कब हो जाती है? पूरी प्रत्यक्षता कब हो जाती है? जब पुरुषार्थ संपन्न हो तब पूरी प्रत्यक्षता होती है या पुरुषार्थ की शुरुआत हो 2018 में 2028 में? तो जब पूरी प्रत्यक्षता हो जाएगी कि किसको डूबी जा करना है और किसको सपोर्ट करना है तो जान जाएगी लक्ष्मी को सपोर्ट करना है और जगदम्बा को सपोर्ट नहीं करना है। लक्ष्मी के जीवन में ये बात देखने में आती है कि वो सत्ता नहीं चाहती, चाहती है? है? नहीं चाहती। सारे ब्राह्मण परिवार में वो कन्या बहुत सेवादारी साबित हो जाती है, इतनी बड़ी सेवादारी साबित हो जाती है कि अफ्रीका के महाकामी हफ्सियों के बीच में उसे डाला जाता है और वहां भी सेवा की संपन्नता करके दिखा देती है। तो भी दीदी दादी के रूप में ब्राह्मणों की दुनिया में प्रत्यक्ष होती है, दादी बनकर के आती है या असिस्टेंट बनकर के ही रहती है? दादी बन के आती है, हाँ असिस्टेंट बन के रहती है। जो दादी बन करके बैठ गई वो हेड ऑफिस के कंट्रोल में ही नहीं है, उन्होंने अपना हुद्दा जमा लिया, हम गुजरात की इंचार्ज। हम इस स्टेट की इंचार्ज, हम यूपी की इंचार्ज, और उनका ट्रांसफर होने की बात ही कभी पैदा नहीं हो सकती, साफ इनकार कर देती। तो बताओ, धर्म सत्ता राज्य सत्ता अपने हाथ में लेके बैठ गई या नहीं बैठ गई? हैं? और वो कोई सत्ता अपने हाथ में ली नहीं ली?
बाबा, तो असल में ये इस बच्चे का जन्म तो इसमें
सत्युग में होगा, तो सबको दिखाना देखो हम बड़े सेवाधारी हैं, इतनी माताओं के बीच में एक अकेले हम हैं, ये दिखाने क्या जरूरत है, बैठो। हाँ
बाबा, ये सत्युग में तो कृष्ण बच्चा जन्म लेगा।
है?
सत्युग में कृष्ण बच्चा जन्म लेगा।
संगम युग में?
सतयुग
में लेगा।
द्वापर में कृष्ण को कैसे बताया? द्वापर में कृष्ण को कैसे बताया, कौन जन्म लेगा?
द्वापर में कृष्ण को कौन जन्म देगा?
नहीं, द्वापर में कैसे बताया फिर भाई, द्वापर में जन्म लेगा तो कैसे?
माने संगम युग की शूटिंग द्वापर युग नहीं है, संगम युग में त्रेता युग की शूटिंग के बाद जब द्वापर युग शुरू होता है तो द्वापर युग की शूटिंग के अंत में ब्राह्मणों की बीज रूप दुनिया के बीच में वो कृष्ण की आत्मा जेल में से जन्माष्टमी के दिन और स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त के दिन बाहर आती है या नहीं आती है? है? तो शूटिंग हो गई कि नहीं? हाँ।
हम लोग परेशान होते हैं, इसकी परिस्थिति आती है, उस समय बाबा को भूल जाते हैं। नॉर्मल केस में बाबा याद रहता है लेकिन उस समय भूल जाते हैं। उस समय क्या ऐसी स्थिति बनाए ताकि बाबा याद रहे उस समय और इसकी परिस्थितियाँ आराम से कर जाए, कैसे हो सकता है?
हम जानते हैं आत्मा एक रिकॉर्ड है, है कि नहीं? और ये अविनाशी रिकॉर्ड है, इसमें कितने साल का पार्ट भरा हुआ है? 5000 साल का पार्ट निश्चित रूप में ज्यों का क्यों रिपीट होता है?
उसमें क्या कोई चेंजेस नहीं किया है?
कोई चेंजेस नहीं, वो रिकॉर्ड विनाशी होता है दुनिया में और ये रिकॉर्ड अविनाशी है।
तो हम पुरुषार्थ की बात क्यों करते हैं कि पुरुषार्थ जितना ज्यादा करेंगे उतना अच्छा हमारा आगे जन्म और अच्छे होंगे।
मैंने आपको पिछले जन्मों की बात मालूम है कि हमने कैसा 84 जन्मों में पुरुषार्थ किया था?
नहीं मालूम।
नहीं मालूम है तो पॉजिटिव संकल्प करेंगे तो आपका फायदा होगा, आप नेगेटिव संकल्प करेंगे तो कोई फायदा होने वाला नहीं। पुरुषार्थ के लिए 5000 वर्ष के ड्रामा को आगे रखना जरूरी है या आत्मा की याद करना जरूरी है?
याद।
तो आत्मिक स्थिति में स्थिर हो जाइए, मैं तो ज्योति बिंदु आत्मा हूँ, देह हूँ ही नहीं, मेरा क्या कोई बिगाड़ेगा? बिगाड़ेगा तो शरीर का बिगाड़ेगा ना, इस देह से संबंधित संबंधियों का बिगाड़ेगा ना, बच्चे का बिगाड़ेगा, बच्ची का बिगाड़ेगा, पत्नी का बिगाड़ेगा, ये तो देह विनाशी के संबंधी विनाशी है, मेरा कनेक्शन इनसे सदाकाल का नहीं है। मेरा कनेक्शन किससे है जो मेरा कल्याण करने वाला है? किससे? वो क्या कहता है?
हैं?
नहीं, अपन को आत्मा समझो तो सारी परेशानी खत्म। आत्मिक स्थिति की शान में रहेंगे तो कोई परेशानी नहीं, कुछ भी हो जाए कल सो आज हो जाए। एटम बम फटे और ये जो हमने मेहलमानियां बनाए हैं वो सब गिर जाए ताश के पत्तों की तरह, जो कारखाने बनाए हैं वो सब ध्वस्त हो जाए। हम क्या हैं? हम तो आत्मा हैं, तो कोई परेशानी है? देह माने हम तो देह हैं, हमने ये देह से बनाया, ये देह के संबंधी मेरे हैं, तब क्या होगा? परेशानी होगी?
परेशानी
नहीं होगी।
बट इसकी स्थिति को लगातार कायम कैसे रखें?
जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा मन होगा वहाँ तन और धन जरूर होगा। जहाँ तन होगा जहाँ धन होगा वहाँ मन जरूर जाएगा। तन के 10 बच्चे हैं, 200 अमेरिका में चले गए, हमारा मन कहाँ जाएगा? है अमेरिका में ही जाएगा। जिंदगी में जितनी कमाई पैदा की है वो सारी कमाई अमेरिका के कारखाने में लगा दी बच्चों के लिए, मन कहाँ जाएगा? है कारखाने में जाएगा। तो आप बाबा क्या कहते हैं? सब धंधों में है नुकसान सिवाय एक ईश्वरीय धंधे के, तो क्या करना है? है ईश्वर की याद में रहना, धन और तन अर्पण नहीं करना, याद में रहना। याद में रहने का कारण ही क्या हुआ? हाँ, जितना तन हम अर्पण करेंगे उतना हमें उसकी याद आएगी, जितना हम धन अर्पण करेंगे जिंदगी का कमाया हुआ उतना उसकी याद आएगी जरूर। जितना मन के संकल्प ईश्वरीय ज्ञान के अनुसार श्रीमत के अनुसार चलाएंगे उतना मन एकाग्र होगा। मनन चिंतन मंथन करेंगे ज्ञान का तो मन एकाग्र होगा या नहीं होगा? होगा। तो मूल बात तो है हम अपनी शक्ति कहाँ लगा रहे हैं। गृहस्थी हैं, हम क्या करें? बाबा ने कहा बल गृहस्थी में रहो, बल शब्द लगा देते हैं, बल मकान बनाओ, बल शब्द लगा दिया। एक कमरा गीता पाठशाला के लिए छोड़ देना, वो नहीं कर पाते। गृहस्थी भी दो प्रकार की है, एक प्रकार की है हद की गृहस्थी और बेहद की गृहस्थी। गृहस्थी एक जन्म की है या 84 जन्म की है? हैं? 84 जन्म की। उनमें सबसे श्रेष्ठ जन्म है सतयुग का और सबसे भ्रष्ट गृहस्थी का जन्म है कलयुग के अंत का। सबसे श्रेष्ठ संबंधी आत्माएं मिलेंगी सतयुग में और सबसे भ्रष्ट ज्यादा से ज्यादा दुखदायी आत्मा कौन से जन्म में मिलती है? हैं? इस आखिरी जन्म में। तो क्या करना चाहिए? जो आखिरी जन्म में संबंधी मिले हैं उनके लिए तन मन धन अर्पण करते रहे, या जो संगम युगी श्रेष्ठ जन्म में हमें संबंधी मिलेंगे उनके लिए हम अर्पण करें। जो ओरिजिनल वसुधैव कुटुंबकम है सारी वसुधा हमारा कुटुंब, सारी दुनिया के बीज रूप आत्माएं 108, वो हमारे संबंधी हैं पहले पहले जन्म में। तो किसके लिए मरना है? अंतिम जन्म वालों के लिए, तमो प्रधान के लिए। बड़ा अच्छा ज्ञान मिला है। और
बाबा की जो प्रतिष्ठा होगी ना, वो कहाँ से होगी, उन्हें किस कोने से होगी?
आपके द्वारा। आप अष्टदेवों में से फर्स्ट देव बन जाएंगे, और जो पहला बड़ा बच्चा है वो बाप की प्रत्यक्षता करेगा, पहले नहीं करेगा, फिर क्या? और हाँ,
बोले कि 98 के बाद में बाबा का ब्रह्मा कुमारियों ने 98 के बाद में बाबा का कुछ भी नहीं बिगाड़ा।
कुछ भी नहीं बिगाड़ा क्यों?
98
के बाद कुछ भी नहीं बिगाड़ा।
जगदम्बा भी उनसे मिल जाएगी
है,
अभी तो जगदम्बा जीने वालों से मिल जाएगी ना।
98 के बाद प्रजापिता का कुछ भी नहीं बिगाड़ा है,
कोशिश तो खूब किया लेकिन
अरे गलियों गलियों की खाक छनवा दी कि नहीं? गली गली की खाक छानता फिरता है या नहीं? भस्मासुर ने क्या किया? सारी दुनिया में शंकर जी भागते फिरे कि नहीं भागते फिरे हैं? तो भस्मासुर ने कुछ नहीं किया। कृष्ण भगवान ने क्या किया? कंस के डर से गौणों 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 में भागते फिरे कि नहीं भागते फिरे? नहीं भागते फिरे हैं? अरे बोलो, तो कुछ नहीं किया। ऐसे ही राम जी ने भगवान बताया गया, वो रावण के डर से जंगलों में छुप छुप के लड़ाई लड़ते रहे, गुरिल्ला वार करते रहे कि नहीं करते रहे हैं? तो फिर
बाबा ने बताया
ये यादगारें कहाँ की है? फिर नहीं क्या?
98 में जो बाबा का हुआ वो हर बच्चे के साथ में होगा, ब्राह्मण बच्चे के साथ।
नंबर वार होगा, सबसे ज्यादा बाप के साथ होगा, फिर नंबर वार औरों के साथ होगा।
बाबा की क्लास चालू होती है माताएं आती है
आती है
तो उनके पास में से पैसे निकाल लेते हैं, तो उनका क्या मतलब है ना?
क्या
जैसे माताएं
आती है तो हाँ। पैसे लाती है हाँ।
कोई माताएं निकाल देती तो उनका पद क्या होता?
चोर बनेगी जन्म जन्म अंतर। राजा के जो मातहत है सिपाही लोग, उनकी पिटाई होती रहेगी, मार खाती रहेंगी, और क्या बनेगी? और जिस ब्राह्मण कुल में बैठ करके पढ़ाई पड़ी है, उस ब्राह्मण कुल में ही कोई न कोई जन्म तो लेंगे, लेकिन दास दासी बन के रहेंगे या राज्याधिकारी बन के रहेंगे? दास दासी बन के रहेंगे। ऐसे क्यों कर रहे
हैं?
अरे आपको फायदा है कि नुकसान है? आपको जन्म जन्मांतर का नुकसान है या फायदा है? हाँ, यज्ञ की चोरी की ना, तो मुरली में क्या बोला है? जो यज्ञ की चोरी करते हैं, चोरी चकारी करने वाले ऊंच पद पावेंगे या नीच पद पावेंगे? नीच पद पावेंगे। तो आपको तो फायदा हो जाएगा, आपको तो दास दासी चाहिए कि नहीं? कमाल, बाप का नाम क्यों बदनाम हो रहा? अरे स्कूल में अच्छे बच्चे भी होते हैं और खराब से खराब बच्चे भी होते हैं, नाम बदनाम होने की क्या बात है?
अच्छा पैदा हो जाती ना।
क्लास में डिस्टर्ब होती है,
अच्छी पैदा हो जाती है, सबका हो जाती
है। अरे गीता में लिखा है श्रेष्ठ आत्मा वो है यस्मान नोद्विजते लोको, जिससे लोग जो हैं वो उद्वेग को प्राप्त न हो, परेशानी को प्राप्त न हो। यहाँ परेशानी पैदा कर दी ना लोगों को, तो कौन निमित्त बना उद्योग पैदा करने के, वो ही आत्मा बन गई। यस्मान नोद्विजते लोको लोकान नोद्विजते चय, दूसरी बात जो दुनिया वालों से, दुनिया वालों के कर्म से, बोल से उद्वेग को प्राप्त न हो, परेशान न हो। जो हुआ ड्रामा में अच्छा हुआ, फायदामंद है या नुकसान है? है ड्रामा फायदेमंद है या नुकसानकारक है? अरे ड्रामा कल्याणकारी है या कल्याणकारी?
बाबा बाबा के बच्चे तो समझ करके नहीं बोलेंगे कुछ
है?
बाबा के बच्चे तो समझ करके परेशान नहीं होंगे।
हाँ।
तो बाबा का ज्ञान मिल गया।
हाँ।
लेकिन बाहरी लोग तो हैं जो क्या नाम से ओर मत
देंगे, यहाँ भी तो अचल होती है ना,
वो तो कहेंगे ही कि तुम्हारे ज्ञान में ऐसे होता है।
हाँ।
फिर क्या कहें उनको?
जो बाहर के लोग हैं उनके लिए ही तो फिल्मी में गीत गाया हुआ है, अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, इन बेकार की बातों में ये संगम युग की बीत न जाए रहना। अरे ये संगम युग मौजों का युग बताया है, तो मौज मनानी है या दुनिया वालों को देख देख के उनकी बातों को सुन सुन करके परेशान होना है, क्या करना है?
वो कहे तो कहने दे, अपन तो मौज में रहे।
मतलब
मौज
वो अपने मुंह से कहते हैं या हमारे मुख से कहते हैं?
वो तो कहते तो अपने मुंह से।
तो अपने मुंह से जो ग्लानी करते हैं, फालतू की ग्लानी करते हैं, उनके मुंह में पाप चढ़ेगा या हमारे मुंह में पाप चढ़ेगा? इतनी सी बात नहीं जानते? हाँ।
जैसे किसी के 1000 रूपए निकाले, किसी के 500 रूपए निकाले किसी ने।
हाँ।
और पूरा आत्मा भी 500 रूपए लेके आई है, तो जैसे चेकिंग करते तो वो आत्मा के पास 500 रूपए मिलेंगे तो कहेंगे ये चोर है।
बड़ी खुशी खुशी चेकिंग करा देना चाहिए, भैया चेकिंग कर लो, शायद शायद हो सकता है कि पता चल जाए, क्योंकि जो चोर होगा वो तो चोरी करके खिसकना चाहेगा या बैठना चाहेगा, है?
वो चेकिंग नहीं करेगा।
हाँ? चोर होगा तो वो तो मौका पा करके भाग जाना चाहेगा। और है हाँ जी, वो आवाज नहीं सुनाई पड़ती, आप बोलिए।
बाबा राम और रावण।
हाँ।
तो एक ही आत्मा है।
हाँ।
तो रावण तो हर साल रावण का तक बढ़ता जा रहा है, तो राम का तक क्यों नहीं बढ़ता?
मना राम वाली आत्मा सब क्षेत्र से प्रत्यक्ष होती है, तो जब से प्रत्यक्ष होती है उसका प्रभाव दुनिया में बढ़ता जाता है या घट जाता है बीच में? 98 में मान लो बड़ी भारी ग्लानी पैदा कर दी अखबारों के द्वारा, टीवी के द्वारा, चैनल्स के द्वारा, तो 2001 से 2000 से और ज्यादा प्रत्यक्षता होने लगी या कम हुई? और ज्यादा हुई। उसके बाद फरक्काबाद में 2 महीने अखबारों की धुआंधार ग्लानी चली मीना कुमारी कन्या को लेकर के, बांदा की कन्या, और उस ग्लानी में सरकार के लोग भी परेशान हो गए, आखिर करें तो करें क्या, हम तो ऐसे फंस गए, पुलिस के लोग भी परेशान, और जनता तो दहशत में आ गई, उसने कुछ नहीं कर पाया तो तिराहे पर दुराहे पर चौराहे पर बाबा के पुतले जलाना शुरू कर दिए। तो देखो उसके बाद सेंटरों का फैलाव बढ़ गया या घट गया है? और ज्यादा बढ़ गया। उसके बाद अभी कलकत्ता में ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा चैनल्स वालों को पैसा दे करके कोई कन्या भाग के आई दिल्ली में, उसको लेकर के धुआंधार ग्लानी करना शुरू कर दी और सरकार के लोग सक्रिय हो गए, पुलिस भी सक्रिय हो गए, कई भाइयों को साल्ट लेक सेंटर से उठा करके जेल में बंद कर दिया। रविंद्र भाई को भाग जाना पड़ा और कई दिन तक सेंटर में लोगों का आना ही बंद हो गया। जैसे खादिम सू कंपनी का जब केस उठा था बंगाल में, तो उसका जो मुखिया था वो ब्रह्मा कुमारियों में जाता था, उसको किडनैप कर लिया गया और उस किडनैप को लेकर के रविंद्र भाई का नाम डाल दिया कि इन्होंने किडनैप करवाया। वो पकड़ लिए गए, महीने दो महीने तक उनको जेल में रखा, खूब पिटाई भी की। ये किसका प्रभाव था? ये प्रभाव था टीवी चैनल्स का, अखबारों का, रेडियो का। ये हालत हो गई कि दो तीन महीने तक जिस सॉल्ट लेक सेंटर में 400-500 लोग आते थे संडे संडे, वो सब गायब हो गए। एक ने भी आना जाना पसंद नहीं किया, यहां तक कि अपनी अपनी कन्याओं को ले जाने के लिए संदेश भेजने लगे। तो ये छोटे मोटे छुटक पुटक उदाहरण हैं। सत्य और असत्य के युद्ध के, क्या बड़ा महावारी महाभारत युद्ध बीज रूप आत्माओं में आधार मूर्त आत्माओं में नहीं हो सकता? आसार दिखाई नहीं पड़ते हैं? अभी भी कानों में आवाज आती है, जो भी सेंटर्स के बड़े बड़े मुखिया हैं उनको ये चैलेंज दिया जा रहा है, जैसे तुम्हारे बाबा का असर किया था 98 में, ऐसे ही तुम्हारा भी असर करेंगे। और हर वर्ष प्लानिंग बनाते हैं, हिम्मत नहीं हो पाती है शुरुआत करने की, क्योंकि तो ऑल इंडिया का बड़ा काम हो जाए। तो क्या पूछा था? रावण बढ़ता है तो राम नहीं बढ़ता है क्या? हैं? अच्छा, हर दुनिया की हर आत्मा, चाहे रावण संप्रदाय हो चाहे राम संप्रदाय हो, पहले सत्व प्रधान होती है और अंत में तमो प्रधान होती है। तो अंत में रावण बहुत भयंकर रूप धारण कर लेगा बढ़ते बढ़ते, करेगा या नहीं? राम को तो एक सिर और रावण को तो 10 सिर। सनातन धर्म के भी मुखिया हैं, धर्माधीश राज्याधीश हैं या नहीं? तमो प्रधान, अरे हैं कि नहीं? और ब्रह्मा बाबा के फॉलोअर से चंद्रवंशी भी, जो अभी सफेद कपड़े वाले सन्यासी हैं, उनके भी मुखिया इसी ब्राह्मणों की दुनिया में बैठे हुए हैं, जो अपनों को अभी भी हिंदू कहते हैं। हिंग माने हिंसा, दू माने दूते, हम हिंसा को, काम विकार की हिंसा को दूर करने वाले हैं सफेद कपड़े पहन करके, ग्लोबल हॉस्पिटल खोल करके, क्या क्या खोल करके, ग्लोबल हॉस्पिटल खोल करके, जो खोलने के लिए बाबा ने जिस्मानी हॉस्पिटल मना किया हुआ है, फिर भी खोलने का कोई तो कारण होगा, कारण होगा या नहीं होगा, अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो हॉस्पिटल खोल दिए, ठीक है कुछ भी। वो भी तमो प्रधान बनते हैं या नहीं बनते हैं, वो भी तमो प्रधान इस्लामी जो मध्य में आए, वो भी तमो प्रधान बनते हैं, बौद्धि क्रिश्चियंस वगैरह वगैरह सब तमो प्रधान बनते हैं या नहीं बनते हैं, हैं? और इन सब का बाप कौन है, इन सब मनुष्य जो अलग अलग धर्मों में कन्वर्ट होते हैं, ये अलग अलग धर्मों के मुखिया हैं, उन सब का कोई बाप है या नहीं है, कौन है, राम बाप। वो सबसे ज्यादा तमो प्रधान कभी बनेगा या नहीं बनेगा, क्योंकि नियम है जो सबसे जास्ती सत्व प्रधान बनता है वो ही सबसे जास्ती अंत में तमो प्रधान बनता है। तो बाबा ने कहा तुम बच्चे इस दुनिया का विनाश करने के निमित्त नहीं बन सकोगे, क्या इस दुनिया का विनाश पवित्रता से होता है या अपवित्रता के व्यभिचार से होता है, हैं? अपवित्रता के व्यभिचार से दुनिया का विनाश होता है, तो तुम नहीं कर सकोगे ये बड़ा काम, बच्चे तुम्हारा बाप आया हुआ है वो ये काम करके दिखाएगा, तुम ये काम जल्दी नहीं कर सकोगे, तुम्हारे में इतनी ताकत नहीं है, और बाप में ही वो ताकत है जो शास्त्र में दिखाया है कि सागर मंथन हुआ तो पहले पहले क्या निकला है, हालाहल विचार का विष निकला, किसने पिया, एक नहीं पिया और बाकी सब पूछ दबा के बाग खड़े हुए, तो बड़ा रावण कौन हुआ, राम ही, कब, आदि में मध्य में या बिल्कुल अंत में, है जब सबका कचूमर निकल जाता है व्यभिचार के मामले में, सब कमजोर हो जाते हैं, व्यभिचार का कौए जैसा सुख भोगने में, तब अंत में इस संसार में बाप प्रत्यक्ष होता है, सारी दुनिया में विजय विनाश का डंका बजाने के लिए 7 दिन के अंदर सारी दुनिया के सब धर्मों का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना प्रत्यक्ष हो जाती है। कब होगा, 36 में ही होगा, सभी धर्म पिता हैं, कितने वर्ष में आए अपना काम किया, 100 वर्ष के अंदर, तो बाप भी 100 वर्ष के अंदर स्थापना पालना और विनाश का काम पूरा करता है। ओम शांति।